بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت ابو هريرة رضي الله عنه فرماتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن کون ہے جو چند کلمات کو مجھ سے لے اور اس پر عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ اس کے لیے میں تیار ہوں یا رسول اللہ فأخذ بیدی وعدا خمسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں شمار فرمائی اس کو ذرا نمبر وار سن لیں نوٹ بھی کر لیں پہلی چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے کو بچا لے تو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار عبادت گزار بن جائے اتق المحارم تکن اعبد الناس تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس سے اپنے کو بچا لے تو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جائے دوسری چیز فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن ابن الناس تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائے دوسری چیز فرمایا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بے نیاز ہوگا تیسری بات ارشاد فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر تو کامل مومن ہوگا چوتھی چیز فرمایا احب لغیرک لأخیک ما تحب لنفسک تو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تکن مسلمان تو کامل مسلمان ہوگا اور آخری بات فرمایا ولا تکثر الذکر فإن کثرة الذکر تمیت القلب زیادہ نہ ہنسا کر زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے پہلی بات فرمایا تو حرام چیزوں سے بچ تو اللہ کا سب سے زیادہ پرہیزگار بندہ بنے گا اللہ سے قریب ہونے اور پرہیزگار بننے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی تفصیلات نہیں بیان فرمائی فرمایا حرام چیزوں سے بچو और आज इस जमाने में यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंसान अपने को अल्लाह की मना करदा चीज़ों से, अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह को जो चीज़ें नापसंद हैं उससे अपने आप को बचाए। नेकियां करने को कहो तो कर लेंगे, लेकिन जब बुराइयों से बचने की बात आती है तो फिसल जाएंगे। ये बड़ा मसला है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, इस्तहयू मिन अल्लाह हक़्क़ल हया। मेरे सहाबा, तुम अल्लाह से हया करो जिस तरीके से हया करने का हक है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, इन्ना नस्तहयी वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से हया करते। फरमाया, नहीं सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, हया का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे। उसके बाद में अल्लाह के नबी से चार चीजें इरशाद फरमाई कि जब तुम इनको करोगे तो तब भी तुम अल्लाह से जिस तरीके से हया करना है उस तरीके से हया करने वाले बनोगे। वो चार चीजें नोट कर लें। फरमाया, अंतहतज़र रासा वमा वाहा वल्बतना वमा हवा وَأَنْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْغِلَى। पहली चीज फरमाया, तू अपने सर और सर से लगी हुई जितनी चीजें हैं उनकी हिफाजत कर। दूसरी चीज फरमाया, तू पेट और पेट के करीब रहने वाली चीजें उनकी हिफाजत कर। तीसरी चीज फरमाया, तू मौत को याद कर। और चौथी चीज फरमाया कि कब्र में जाने के बाद बदन जो फूलता है, फटता है, सड़ता है, गलता है, उसको याद कर। इज़ा फ़अलता हाज़ा फ़क़द इस्तहयैत मिन अल्लाहि हक़्क़ल हया। ऐ इंसान, जब तू इन चार कामों को करेगा तभी तो अल्लाह से जिस तरीके से हया करना है उस तरीके से हया करने वाला बनेगा। पहली चीज के सर और सर से लगी हुई चीजें जो है उनकी हिफाजत कर। सर में आंखें लगी हुई हैं उनकी हिफाजत हो। सर से जुबान और कान लगे हुए हैं उनकी हिफाजत हो। सर में दिमाग है उसकी हिफाजत हो। तो मतलब यह है कि निगाहों की हिफाजत, जुबान और कान की हिफाजत, हमारी सोच और फिक्रों और अफकार की हिफाजत, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज नज़र की हिफाजत एक बड़ा चैलेंज है। इंसान अच्छे माहौल में रहता है, एक घंटा टाइम नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दीन के मुज़ाकरे करे, तस्बीह पढ़े, दुआ करे, सब ठीक है। लेकिन मर्दों के लिए अभी मस्जिद से उनके कदम भी बाहर नहीं जाते, नजरें बाहर चली जाती। ऐसे ही औरतों के लिए भी हर तरफ आज़ादाना माहौल है। तो ऐसे में अपनी नज़रों की हिफाजत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह जल्ले जलालुहु अमन वालुहु इंसानियत की इससे हिफाजत फरमाए। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज़। हमारे हजरत पीर साहब दामत बरकातुहु ने बदनजरी के नुकसान और उससे बचने की तदबीरें इस उनवान पर कुछ चीज़ें बयान की हैं। वो हमारी वेबसाइट में भी हैं। हमारी वेबसाइट है दावत-ए-हिदायत.org, दावत-ए-हिदायत.org। वो चंद किताबें नुस्खे हमारे पास हैं। मैं यहाँ के जिम्मेदार उस्ताद के हाथ देता हूँ, आप उसकी कापियाँ बना लें खुद भी पढ़ेंगे, घर वालों तक पहुंचाएंगे, और वेबसाइट में अंग्रेजी तर्जमा भी है, उर्दू में भी है, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, कई जुबानों में भी हजरत की किताबें हमने तर्जमा करके डाली हैं, खुद भी देखें और उनको भी सुनाएं। तो बदनजरी एक बीमारी है जो आम हो गई है और हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बीमारी को बुरा बोलना इससे कुछ हासिल नहीं, हाँ बीमारी से अपने को बचाना अभी असल चीज है। तो किस तरीके से खुद को बचाया जाए, यह है असल। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने औरत की इज्जत और मकाम को इतना बढ़ाया कि उसकी हर चीज को पर्दे में रखती, उसका बदन वो पर्दे में ढका हो, बुरके में पोश हो, उसकी आवाज़ उसको भी पर्दा बना दिया, हत्ता के नमाज में भी औरत को ज़ोर से पढ़ने की इजाज़त नहीं है, औरत की अजान इसकी इजाज़त नहीं है, औरत के लिए इमामत ये जायज नहीं है। तो दीनी और नमाज और कुरान में भी उनकी आवाज़ बुलंद हो ये भी शरीयत पसंद नहीं करती है। तो उसकी आवाज़ का पर्दा, उसके बदन का पर्दा, उसके बालों का पर्दा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो हमारी माएँ हैं उनके बारे में कुरान में है, ऐ लोगों इज़ा सअलतुमूहुन्ना मतअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, जब तुम इनसे कोई चीज़ पूछो और इनसे कोई चीज़ लो तो पर्दे के पीछे से लो। उम्मत की माएँ हैं, हम सब की माएँ हैं, उनके साथ भी इतना पर्दे का लिहाज किया गया। तो औरत को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने शराफत बख्शी, इज्जत बख्शी, और कुरान पाक की बहुत छोटी सी आयत है, वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, और औरतों के लिए भी वैसे ही हुकूक मर्दों पर हैं जिस तरीके से मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। इसमें नोट करने की बात यह है कि अल्लाह ने पहले औरतों के हुकूक को बयान फरमाया, वलहुन्ना उनके लिए यानी औरतों के लिए पहला मकाम इनको दिया, इनको बता रहे हैं कि इसलिए कि इंसानियत ने औरत के हुकूक को भुला दिया था, बल्कि इंसानियत से गिरा दिया था, बल्कि इंसान मानने को तैयार नहीं थी। बाज़ कौमें तो औरत को इंसान भी नहीं मानती थी और बाज़ कौमें तो जानवर के जैसा बर्ताव करती थी, हत्ता कि एक इंसान अपनी खेत में जाता तो हल चलाने के लिए एक तरफ बैल को बांधता तो दूसरी तरफ अपनी औरत को बांधता था। यहाँ तक मुआशरा गिरा था, सलाम हो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने औरत के मकाम को बुलंद फरमाया। उन्वान तो बड़ा लंबा है, वक्त बहुत मुख्तसर है। तो मेरी माँ और बहनें, आपको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, औरत ही हजरत अंबिया की माँ बनी, औरत ही हजरत औलिया की माँ बनी, और नबियों का सिलसिला तो ख़त्म हुआ है लेकिन वलियों का, अल्लाह के नेक बंदों का, मशाइख का, उलमा का, सुलहा का सिलसिला यह क़यामत तक रहेगा। उसको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने औरत ही को ज़रिया बनाया। तो खुद अपने मकाम को औरत पहचाने। एक मस्तूरात की जमात हवाई जहाज में सवार थी, सब बुरका पोश थे। एक एयर हॉस्टेस आई, उसने मजाकी अंदाज में कहा, तुम क्यों इस तरीके से जकड़बंदी में, पाबंदी में अपने आप को कैद में रखे हो, हमें देखो हम कैसे हैं। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा दोहराया और तंजिया अंदाज में ये कहा, तो फिर उन्होंने इसको समझाने के अंदाज पर एक बात कही कि अच्छी बात है, एक सवाल हम करते हैं, वो ये कि अगर एक इंसान दो माउस और केले एक थाल में एक प्लेट में रखे, एक का चिंता का छिलका निकाल दे और दूसरा छिलके के साथ इसको गली में जाके रख दे सुबह से शाम तक, और शाम को लाकर तुम्हारे सामने पेश करे और कहे इसमें से एक उठा लो, तो तुम कौन सा केला और कौन सा मौज उठाओगे? उसने कहा कि छिलके वाला। उसने कहा कि क्यों, दूसरा क्यों नहीं? उसने कहा कि वो गंदा है, उस पर धूल मिट्टी गर्द गुबार हुई। कहा यही मिसाल मेरी और तेरी है, मैं छिलके का मौज हूं और तू बगैर छिलके, तेरे ऊपर गंदी नजरें पड़ी हैं, शहवानी शैतानी। तो अल्लाह जल्लाहू ने औरतों की हिफाजत के खातिर उनको जो है ये हुक्म दिया। एक मौलाना सफर कर रहे थे रेल में, अहलिया साथ थी, आगे एक गैर था, उसकी बीवी भी साथ थी। उसने भी तंजे अंदाज में कहा, तुम लोग देखो कैसे पूरा पैक करके ले जाते हो, हम लोग देखो किस तरीके से आजादाना तौर पर इनको ले जाते। तो मौलाना ने सोचा उसको कुरान और हदीस से दलील क्या पेश करें, क्या समझाएं, वो तो गए रहे। उन्होंने पूछा आप कहाँ उतरेंगे? कहा कि फलां स्टेशन में। तो कहा अच्छा बताओ, आप वहाँ से घर जाएंगे तो घर के बाहर दरवाजे पर आपकी अहलिया गले में जो हार है उसको निकाल कर, हाथों में जो चूड़ियाँ और बंगड़ियाँ हैं उनको उतार कर और दीगर पूरे जेवरात को निकाल कर घर के बाहर दरवाजे पर डाल कर और जूते चप्पल उठाकर घर के अंदर जाए और कोठरी के अंदर रूम के अंदर फिर अलमारी खोलकर उसके अंदर जो लाकर होता है उसके अंदर जाकर रखती है, ऐसा नहीं होता है नहीं क्या? वो एकदम मुंह खोल गया। वो क्या बोलते तुम्हें? अरे क्यों, क्या बात है? वो क्या कोई जेवर बाहर गली में दरवाजे के पास डालकर जूता ले जाकर अंदर रखेंगे क्या? पूछा क्यों, क्या बात है? कहा कि जेवर कीमती चीज है और चूप चप्पल हसीर चीज है। कहा कि ये बात तस्लीम करते हो कि जेवर कीमती चीज है? जी फिर तो क्या उसकी हिफाजत जरूरी है? कहा कि क्यों नहीं, जरूरी है। तो कहा सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद दुनिया कुल्लुहा मता, कि दुनिया सारी की सारी हकीर चीज है, वो खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और इन तमाम चीजों में सबसे बेहतरीन चीज वो नेक खातून है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तमाम चीजों में सबसे बेहतर औरत को ठहराया है, इसलिए इसकी हैसियत और इसकी कीमत हमारी नज़रों में सोने चांदी से ज़्यादा, हीरे जवाहरात से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसकी हिफाजत करते हैं। तो जो औरत इसको समझे, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु दुनिया में भी इज्जतों से नवाजते हैं और आखिरत तो है ही। तो बात तो लंबी है, मौजू बड़ा लंबा है, तो पहली चीज़ ही मैं बात ख़त्म करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो पहली चीज़, हम इन चीज़ों की हिफाजत करें, जुबान की हिफाजत हो, कान की हिफाजत हो। आज म्यूजिक का चल चलाव बहुत है, हर तरफ राग है, गाने हैं, बजाने हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया म्यूजिक इंसान के अंदर उसी तरीके से निफाक को पैदा करता है और बढ़ाता है जिस तरीके से पानी सब्जे को और हरियाली को बढ़ाता है। तो इंसान के अंदर निफाक पैदा होता है। इंसान देखने में मुसलमान है लेकिन अंदर से ईमान इस्लाम के सिलसिले में बदगुमानियाँ, बदजुबानियाँ, बेजारगियाँ, ये सब चीज़ें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वैसे ही जुबान की हिफाजत है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। उसका एक इम्तिहान करना हो तो आज मजलिस ख़त्म होने पर अगर इस मजलिस की कोई भी खातून बात ना करे तो समझे वो सबसे पहले नंबर पर कामयाब है। औरतों के लिए खामोश रहना बड़ा मसला है। हाँ, लेकिन ये जब जहन में रख ले मायलफिलीत, जो बात भी जुबान से निकलती है उसको नोट करने वाले फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और हर हर चीज का जो लिखा हुआ हमारे सामने पेश किया जाएगा, वहाँ इंसान पछताए, अफसोस करे कि मैंने क्या बकवास की और क्या बेकार चीजें बकी थी, वहां का पछताना कोई काम नहीं देगा। वो कुल इंसानी मजम ना होता वो नुखरी जो लहू यौमल क़ियामत किताब यलकाहु मंशूरा इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका यौम अलैका हसीबा। इसलिए मेरी मोहतरम ख़वातीन माँ बहनें, ज़ुबान की हिफाजत इसका बहुत ख्याल रखें। ये बेकार की चीज़ है, इससे हम अपने नामे आमाल को ख़राब करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, आंसर लिखने के लिए शीट्स दे दिए गए, अब वक्त आपके पास है, आप सही जवाब लिखें, साफ सुथरा लिखें, अच्छे अंदाज में लिखें और नीट तरीके पर उसको पेश करें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब दूसरा कोई है उसे अख्तियार है, वो कागज़ को ख़राब करे, जवाब गलत लिखे और उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचे, उसमें स्याही भरे, उसको मरोड़े, उसको ख़राब करें, जो चाहे करे उसके हाथ में है। एग्जामिनर भी कुछ नहीं कहेगा, इम्तिहान वाला भी देखकर गुजर जाएगा, लेकिन बाद में जब नतीजा निकलेगा तो वो पछताएगा। तो इसी तरीके से हमारे नामे आमाल को हम साफ सुथरा रखें, ये भी हमारे हाथ में है। और ईरान की दूरान की बेकार इधर की उधर की बातें करके हम अपने नामे आमाल को ख़राब कर लें, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये भी हमारे हाथ में। तो पहली बात थी पर हम ख़त्म करते हैं। سنی ہوئی باتوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور دوسروں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہم کو نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، اللہ جی ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہر گناہ سے بچائیے، ہر گناہ کے موقع سے بچائیے، اے اللہ ہر گناہ کی جگہ سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، برے ماحول سے بچائیے، بے حیائی سے بچائیے، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیتوں کو قبول فرمائیے، اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ بے حد اللہ اس کو قبول فرمائیے، اس کی حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ نظر بد سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، بدخواہوں کے بری برائی سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ ترقیات عطا فرمائیے، دین دنیا آخرت کی ترقیات عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دین کو بہتر بنائیے جو ہمارا سر سرمایہ، ہماری دنیا کو بہتر بنائیے جہاں ہم کو رہنا ہے، ہماری آخرت کو بہتر بنائیے جہاں ہم کو جانا ہے، اللہ ہماری زندگی کو ہر خیر کی زیادتی کا ذریعہ بنائیے، ہماری موت کو ہر برائی کے خاتمہ کا سبب و ذریعہ بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله۔